नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्याला मेरा लबरेज कर, दिश नाल भी को दूर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से पूर कर, यीशु से। फल रुके मुझ में पैदा करने की खुशी हिल्म पैदा कर, परहेजगारी पैदा कर, परहेजगारी पैदा कर यीशु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में जैसा कि हम सब ने देखा कि पतरस यीशु मसीह का इनकार करने पर था, और हमने इसके पूर्व यह भी देखा कि यहूदा इस्करियोती परमेश्वर को पकड़वाने पर था। आज हम उसके आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें ताकि आज के वचन के द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर सकें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर अवसर के लिए जो आप हमें प्रतिदिन देते हैं ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। क्योंकि जब हम इस संसार में अपनी नजरों को उठा करके देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके वचन को सुने, लेकिन उनके पास में समय नहीं है। लेकिन आपने हम सबको ऐसा अवसर दिया है कि हम आपके वचन का अध्ययन घर में बैठ करके कर सकते हैं। पिताजी, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि हर एक जो आपके वचन को सुनता है आपकी बातों को समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलने पाए। हम विनती करते हैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन से दुखी और निराश हैं। हो सकता है कि वे अपने नौकरी की तलाश में हैं, वे बीमारी की स्थिति में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, और इतना ही नहीं अपने विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन की आवश्यकताओं को जानते हैं। अपने वचन के द्वारा से आप उनसे बातचीत करें और उनकी सहायता करें। इस समय फिर से एक बार हर एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बोले और बातचीत करें और अपनी महिमा लें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, बाइबल के अध्याय संदर्भ खोजने में हमारी बड़ी सहायता करते हैं, परंतु कभी कभी अध्यायों का यह विभाजन विषय को बीच में तोड़ देता है। जैसे यहाँ अध्याय संख्या 14 है, परंतु यीशु की बात अध्याय 13 के अंत के साथ समाप्त नहीं हुई है। पतरस बच्चे के समान यीशु के साथ जाने का आग्रह कर रहा था, जिस पर यीशु ने उससे कहा कि वह उस समय तो नहीं, परंतु बाद में निश्चय ही वहां जाएगा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, प्राण देने की बात तो छोड़, तू सुबह मुर्गे के बांग देने से पूर्व 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ। यीशु उन पर छाने वाले अंधकार को देख रहा था, अतः वह उन्हें ढाड़स बंधाता है और उन्हें परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाता है। अतः यह अध्याय वास्तव में अध्याय 13 की ही विषय वस्तु है। तब से आज तक इस अध्याय ने असंख्य विश्वासियों को ढाड़स बंधाया है। आइए हम आगे देखते हैं, यीशु अपने शिष्यों को ढाड़स बंधाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रिय मित्र, आज संपूर्ण विश्व के लोग शांति की खोज में हैं। केवल यीशु ही शांति दे सकता है। उसने शांति का आधार प्रस्तुत किया है। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूनानी भाषा, जो नए नियम की मूल भाषा है, उसमें यह वाक्य आदेश भी देता है। आपको यह विश्वास है कि इस विशेष रेलगाड़ी से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो क्या आप विश्वास के द्वारा दिल्ली पहुंच जाएंगे? जी नहीं, आपको रेलगाड़ी में बैठकर अपने आप को निश्चित छोड़ देना है। इसी प्रकार आप उद्धार पाते हैं, आप मसीह में विश्वास करके अपने आप को निश्चिंत करके उसके हाथों में छोड़ देते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, यीशु का यह कथन सिद्ध करता है कि वह परमेश्वर तुल्य है, वरन परमेश्वर ही है। परमेश्वर में विश्वास रखने का अर्थ है कि आप नास्तिक नहीं हैं, परंतु यीशु में विश्वास रखने का अर्थ है उसमें वैतिक विश्वास वरन भरोसा करना है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु के पिता का घर कहाँ है? यह विशाल जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके पिता का घर है। प्राचीन मानव के लिए पृथ्वी ही सब कुछ थी और सितारे चमकती हुई ज्योति, परंतु धीरे धीरे मनुष्य को सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। इसी प्रकार आकाश गंगा का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ कि उसमें अनेक सौर मंडल हैं और ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। और अधिक खोज करने पर जानकारी मिली कि ब्रह्मांड में अनेक अन्य ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वे नहीं जानते, अतः उन्हें क्वासर्स नाम दिया गया है। इंग्लैंड में लगे दूरबीन से खोज करने पर पता चला है कि क्वासरों के पार भी कुछ है, अतः उन्होंने उसे ब्लॉब नाम दिया है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमारी समझ से परे है। यह ब्रह्मांड असीमित है। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हम एक कोने में पड़े हैं और वह वहां है। आप और मैं सोचते हैं कि हमारा अपना महत्व है। मेरे मित्रों, मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, परंतु सत्य तो यह है कि मानव जाति उद्धार के योग्य नहीं थी। परमेश्वर चाहता तो हमें वचन द्वारा ही समाप्त कर देता, और न ही पृथ्वी न मनुष्य बचता और वह नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता, परंतु वह अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे करता है? यह तो उसके न्याय और दंड का प्रदर्शन होता, परंतु वह हमसे प्रेम रखता है, चाहे हम पूर्ण रूप से भ्रष्ट ही क्यों ना हो। यद्यपि हम उसके प्रेम के योग्य नहीं, परंतु उसने हमसे प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमें दे दिया, ताकि हम उसके द्वारा से उद्धार को प्राप्त करें। जैसा हमने देखा है कि ब्रह्मांड अति विशाल है, फिर भी यीशु ने कहा कि वह हमारे लिए रहने का स्थान बनाने गया। यह स्थान केवल उसके विश्वासियों के लिए ही है, वहां अन्य कोई नहीं रह सकता है। कई वर्ष पूर्व मेरा एक पड़ोसी 200 इंच के दूरबीन का दर्पण काट रहा था। जब वह तैयार हो गया, तब मैं उससे पूछता रहा कि वे क्या देख रहे हैं। अंत में हार कर उसने मुझसे पूछा, आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा, आपकी इतनी बड़ी आंख स्वर्ग में देख रही है, मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि यीशु वहां मेरे लिए स्थान बना रहा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ध्यान दीजिए कि संपूर्ण बाइबल में यही एकमात्र स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों को साथ ले जाने की बात कह रहा है। अब्राहम से परमेश्वर ने संसार में स्थान देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे आकर अपने साथ ले जाने की नहीं। उसने पृथ्वी पर अपना राजा रखने की उन्हें प्रतिज्ञा दी थी। देखें भजन संहिता 2:6 में, जो स्वर्ग का राज्य होगा। पुराने नियम की यही आशा है, अतः यीशु की बात सुनकर शिष्य अचंभे में पड़ गए थे। मेरे मित्रों, उत्तर काल में पौलुस ने भी थिस्सलुनीकियों के लोगों से यही कहा कि वह उल्लास के साथ आएगा और विश्वासियों को ले जाएगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय में कहता है कि स्वर्ग से नया यरूशलेम नगर उतरेगा जहां हम सब विश्वासी होंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 14:4 में, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। क्या ही अद्भुत बात है। यीशु उन्हें हिम्मत बंधा रहा था क्योंकि वे भयभीत थे। यीशु उन्हें वर्तमान से निकालकर अनंत काल का दर्शन करा रहा था, आत्मिक संसार का दर्शन। यीशु उन्हें गंतव्य और मार्ग बता रहा था। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:5 में, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यहां पर ध्यान दीजिए, थोमा सदैव शंका व्यक्त करता था, इसी कारण उसे संदेह करने वाला कहा गया है। परंतु उसका यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यदि वह यह प्रश्न नहीं पूछता तो हमें सुसमाचार का सारांश नहीं मिल पाता। हम यूहन्ना 14:6 में इसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, यीशु मार्गदर्शक नहीं, स्वयं ही मार्ग है। कलीसिया और कलीसियाई प्रथाएं आपको परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती है, केवल प्रभु यीशु आपको परमेश्वर के पास ले जा सकता है। आपको उसे ग्रहण करना ही होगा। यीशु ने यह भी कहा कि वह सत्य है और जीवन है, वह जीवन का स्रोत है। घास के जीवन से लेकर सर्वोच्च आत्मिक जीवन का स्रोत वही है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, वर्षों पूर्व एक शिक्षार्थी ने मुझसे कहा कि वह बाइबल को पसंद नहीं करता क्योंकि वह सैद्धांतिक है। उदाहरण के रूप में देखें, उसने यही पद दिखाया। मैंने उससे कहा कि उसकी बात अति सत्य है और यह सत्य का गुण है कि वह सैद्धांतिक हो, हठधर्मी हो। परंतु सब सिद्धांत सत्य नहीं होते हैं। यदि मुझे कहीं जाना हो तो मैं चाहूंगा कि मेरी अगुवाई वही व्यक्ति करे जो उस स्थान को भली भांति जानता है। आज 2000 वर्षों से करोड़ों जन मार्ग मैं हूं पर विश्वास करके ही मसीह के पास आए हैं और उन्हें विश्वास हो गया है कि वह सत्य है। आप क्यों ना कोशिश करके देखें। उसने कहा कि उसके बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मित्रों, थोमा का धन्यवाद हो कि उसने यह प्रश्न पूछा और हमें मार्ग मिल गया, क्योंकि यह सच है कि थोमा को हम संदेह करने वाला व्यक्ति मानते हैं। लेकिन यदि यह प्रश्न उसके द्वारा नहीं पूछा जाता तो शायद हमें ये वचन सुनने को नहीं मिलते कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझे और आपको भी यह बताना चाहता है कि वह मार्ग है, वह सत्य है और वह जीवन है। यदि आज मैं और आप उसको इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, तो निश्चित रूप से यह जान लें कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावे कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। वह चाहता है कि आप भी थोमा के समान उससे पूछें कि प्रभु, हम मार्ग नहीं जानते कि हम कहां जाएं। जब आप उससे पूछते हैं तो निश्चय ही वह बताता है कि आप किस मार्ग से उस तक पहुंच सकते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी दर दर भटक कर उस मार्ग को ढूंढ रहे हैं ताकि वे परमेश्वर तक पहुंच जाएं। शांति को प्राप्त करें। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वे परमेश्वर से और अधिक दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का दान है। हमारे लिए सिर्फ अनुग्रह की बातें कही गई है, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर के भी मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि सारे मानव जाति को उद्धार दे, और उसके लिए उसे कीमत चुकानी थी, और वह कीमत था कि वह क्रूस पर हमारे पापों को लेकर बलिदान किया जाए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम सब ने पाप किया है और हमारी मृत्यु अवश्य है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों के बदले में कष्टों को सह लिया ताकि हम जीवन पाएं। और आज वही प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या आज आप उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे अपने जीवन में आने देने के लिए तैयार हैं? वह सत्य है। वचन में यह भी लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दुख की बात तो यह है कि हम में से कई लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। जो भी बातें हैं हम उसे सुन करके उसे अपने पास रख लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप अपने उन रूढ़िवादिताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन के उन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु को ग्रहण करें, क्योंकि वही सत्य है, और जब आप उसे जान लेंगे तो निश्चय जाने कि आपके जीवन में ज्योति आ जाएगी, क्योंकि उसने हमें कहा है कि वह जगत की ज्योति है, वह प्रकाश है जो आपके जीवन में उजियाला ला देगा। मेरे मित्रों, आइए आज के इस अध्ययन के अंत में हम अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें सामर्थ प्रदान करे कि हम इस बात को समझ सकें कि वह मेरा मार्ग है, मेरा सत्य है, मेरा जीवन वही है, और उसी के द्वारा मैं उद्धार पा सकता हूँ, क्योंकि वही एक प्रभु है जो मरकर जी उठा। क्योंकि इस जगत में बहुत सारे बड़े लोग आए, इस संसार में उन्होंने अपने जीवन बिताए, अच्छे अच्छे काम किए और मर गए, लेकिन कभी भी जीवित नहीं हुए। प्रभु यीशु आए और वो हमारे पापों को लेकर मर गए और फिर से जीवित हो गए, क्योंकि वही हमें मुक्ति देने के लिए आए थे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के प्रकाशन में विचार करें और प्रभु को अपने आप के लिए समर्पित कर दें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, क्योंकि सचमुच में प्रभु आप मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन हैं। आज हम भी आपके उन पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, आपके निकटता में आना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हम आपके पास आएं, लेकिन चाहते हुए भी हम नहीं आ पाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी गंदगियां हैं जो हमें दूर कर देती हैं, लेकिन आज हम आपके पास आकर के आपसे क्षमा मांगते हैं। पिताजी, आप हम सब की सहायता कीजिए, हमारे जीवन को स्पर्श कीजिए, ताकि उन महान सच्चाइयों को हम और भी अच्छी रीति से अपने जीवन में समझ सकें। आज तक हम इन बातों को नहीं जानते थे, लेकिन आज हमने जान लिया है कि आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आपके बिना हम आपके पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं, अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। प्रभु, आप हम सब की सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आप में बलवंत किए जाएं, आप में दृढ़ किए जाएं और आपके लिए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। हमारी विनती है कि निरंतर आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 1100019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यसु तकता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यसु तकता रहूं। तेरे करम से तेरी शिवा पे ढलता रहूं, यसु ढलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमें तेरे मसा में डूबा रहूं, तू ही नजर आए मुझ में। तेरे मसा में डूबा रहूं, तू ही नजर की बन के शमा में जलता रहूं, यसु जलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यसु तकता रहूं। तेरे करम से तेरी शिवा पे ढलता रहूं, यसु ढलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा जीवन हो मेरा तेरी गवाही, सांसों में तेरी महक हो। जीवन हो मेरा तेरी गवाही, सांसों में तेरी